सम्यक ज्ञान चंद्रिका लब्धि सार क्षपना सार लेक्चर नंबर 20 आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस लब्धिसार ग्रंथ की रचना की है। उसी के आधार से पंडित रमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लब्धिसार क्षपणासार भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 55 पर आगे 55 ये हम प्रायोग लब्धि में क्या क्या होता है उसकी बात चल रही थी अपनी। पहले हमने देखा था स्थिति बंधापसरण होता है, प्रकृति बंधापसरण होता है, और उदय में भी हमने देखा था किस किस का उदय होता है, उसकी भी हमने चर्चा की थी, अलग अलग कर्मों की अपेक्षा से बात उठाई थी। तो उसके उदय के बाद हमने सत्व की बात देखना शुरू किया था। तो सत्व कौन से प्रकृतियों का होता है के बदले में कौन सा नहीं होता है देखेंगे तो आसान रहेगा। तीर्थंकर प्रकृति का सत्ता वाला वो प्रथम उपशम सम्यक वो नहीं प्राप्त। दूसरी बात, आहार की सत्ता वाला भी नहीं, चतुष्कले क्यों नहीं, उसका रीजनिंग क्या है नलिन भाई? आहार चतुष्क वाला प्रथमोपशम सम्यक तो क्यों नहीं प्राप्त करेगा? पहले ये नक्की करो, मिथ्या दृष्टि को प्रथमोपशम सम्यक तो होता है, मिथ्या दृष्टि, तो ये आहारक की सत्ता वाला सादी होगा कि अनादि होगा? सादी, क्योंकि वो प्रकृति बनती है सातवें में आठवें, इसलिए सादी होना चाहिए। एक ये रूल है कि जब मिथ्यात्व में आता है जीव, सादी मिथ्या दृष्टि है, तो असंख्यात वर्षों तक उसको सम्यक यानी प्रथमोपशम सम्यक तो नहीं होता, वेदक सम्यक तो हो सकता है। तो उस काल से भी छोटे काल में आहारक प्रकृतियों की उद्वेलना हो जाती है, उद्वेलना होने नहीं उल्टा संक्रमण होना, स्वजाति अन्य प्रकृति रूप होकर वो नष्ट हो जाती है। इसलिए जब तक आहारक की सत्ता है तब तक उसका कौन सा काल चल रहा है? तो वेदक योग्य काल चल रहा है। उतने काल में उसको होगा तो वेदक सम्यक तो होगा, प्रथमोपशम नहीं हो सकता। इसलिए आहारक की सत्ता वाले को प्रथमोपशम सम्यक तो नहीं होगा। आहारक में आहारक चतुष्क ले लिया यहाँ, और किसकी सत्ता नहीं होती हमने देखा था। तो जो अबद्धायु है, उसको भी पल्ले के असंख्यात भाग काल लगता है, परंतु वो बात वो छोटा काल है, और सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होने का काल बड़ा है, उसको भी पल्ले का असंख्यात भाग है, परंतु वो बड़ा काल है। इन्हें आहारक की उद्वेलना पूर्ण हो जाती है, उसके पश्चात जाके सम्यक प्रकृति की उद्वेलना पूरी होती है, और फिर बाद में सम्यक मिथ्या तक।
तुमने सत्ता के बारे में
देखा है, इन्हें जो जिसने आयु का बंधन नहीं किया है उसकी भुजमान एक आयु है, अन्य तीन आयु की सत्ता नहीं है। जिसने आयु का बंधन किया है तो उसके भुज्यमान और बध्यमान दो आयु सत्ता में है, अन्य दो नहीं है। तो हमने जो देखा था उसमें और एक बात है कि जो सादी मिथ्या दृष्टि है, अनादि वाले के तो सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता है ही नहीं, सादी मिथ्या दृष्टि के हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो होती है तो दोनों की हो सकती है, और हो सकता है कि सम्यक प्रकृति की नहीं और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता है, क्योंकि उसकी उद्वेलना भी चल रही है, पूरी नहीं हुई है। यानी ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज हमने देखी। अब हम 32 नंबर की गाथा पढ़ने जा रहे हैं, यानी वहां प्रकृतियों का सत्व देखा हमने। जब बंध की बात देखी थी हमने तो स्थिति बंध, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध, चारों की बात की। जब उदय की चर्चा चली थी उसमें भी प्रकृति का उदय, स्थिति का उदय, अनुभाग का उदय, प्रदेश का उदय सब हमने देखा। सत्वों में भी हमने अभी प्रकृति सत्व देख लिया, अब इसके बारे में उसकी स्थिति सत्व, अनुभाग सत्व, प्रदेश सत्व देखेंगे। अब 32 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। अहजन्नमनुकसम चिदीतियम हो दिशत पयडीनम एवं पयडि चौकम बंधादिशुहोधिपतेयम् अजघन्यमनुत्कृष्टम् स्थितित्रिकम् भवति सत्व प्रकृतीनाम् एवं प्रकृति चतुष्कम् बंधादिषु भवति प्रत्येकम्। क्या कहते हैं? देखो, अजघन्यम और अनुत्कृष्ट, जो जघन्य भी नहीं वो अजघन्य है, जो उत्कृष्ट नहीं वो अनुत्कृष्ट है। यानी यहाँ उत्कृष्ट नहीं होगा और जघन्य भी नहीं होगा। पहले भी हमने देखी थी जिसके उत्कृष्ट स्थिति अभी है उसके तो प्रथम ऑप्शन सम्यक तो उस काल में नहीं होगा, बाद में हो सकता। जिसके अति जघन्य उसको भी नहीं होता, ये भी हमने पहले देखे। तो कैसा होता है? तो अनुत्कृष्ट और अजघन्य किसके बारे में बात कहते हैं? तो स्थिति त्रिक के लिए, यानी स्थिति के लिए, प्रदेश के लिए और अनुभाग के लिए, यही बात होगी। ये सत्व की बात चल रही है। इस प्रकार हमने बंध में भी प्रकृति आदि चार बातें देखी, उदय में भी देखी और सत्व में भी। सेकंड लाइन में लिखा ना, एवं प्रकृति चतुष्कम। ये प्रकृति चतुष्क क्या होते हैं? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। बंधादिशु, बंधादिशु में बंध आदि में, यानी बंध में, उदय में, उदीर्णा में और सत्व में हमने देख लिया। अभी इसका अर्थ करेंगे, टीका पढ़ते हैं। उन सत्तारूप प्रकृतियों के, पहले हमने बंधने वाली प्रकृतियों में बात देखी थी, फिर उदय में आने वाले प्रकृतियों की बात देखी थी, अब सत्ता की बात चल रही। तो सत्तारूप प्रकृतियों के स्थिति, अनुभाग और प्रदेश है, वे अजघन्य और अनुत्कृष्ट है। यानी हर एक में लगाना, स्थिति है वो उत्कृष्ट स्थिति भी नहीं है और अति जघन्य भी नहीं है, अनुभाग भी उत्कृष्ट नहीं है, जघन्य भी नहीं है, हमने देखा द्विस्थानिक है अभी, प्रदेश भी उत्कृष्ट नहीं है, जघन्य भी नहीं है। जघन्य या उत्कृष्ट स्थिति, अनुभाग, प्रदेश का सत्व यहाँ नहीं पाया जाता, उसी का अर्थ बताया इन्होंने। इस प्रकार प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश रूप चतुष्क है। चतुष्क यानी चार बातें, हमने बंध में भी चार बातें देखी, उदय में भी देखी, सत्व में भी देखी। वह बंध, उदय, उदीर्णा और सत्व इनमें से प्रत्येक में कहा, वह प्रायः लब्धि के अंत तक जानना। ये जो कथन आया है वो प्रायोगिक लब्धि के अंत तक ऐसा ही होगा। यहां तक बात ख्याल में आई? प्रायोगिक लब्धि में हमने क्या क्या देखा, थोड़ा रिपीट करेंगे। पहले आते ही एक स्थिति कांड घात हुआ, स्थिति जो अधिक थी तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर हो गया। अनुभाग कांड घात हुआ अप्रशस्त कर्मों में, स्थिति कांड घात तो दोनों में होता है, प्रशस्त में भी और अप्रशस्त में भी। स्थिति कांडक घात से क्या घट गया? स्थिति घटी। किसकी? सत्ता की स्थिति घटी। तो ये दो बातें हुई। अब जो नया बंध होता है उसकी बात है। तो स्थिति बंध घटते जाता है तो उसको स्थिति बंधापसरण कहा, किसी प्रकृतियों का बंध रुकते चला जाता है उसको प्रकृति बंधापसरण कहा, उसके हमने 34 स्थान देखे थे। प्रदेश में भी किसके उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट बनता है उसकी भी बात देखी, बाकी अनुत्कृष्ट बनता है उसकी भी चर्चा की, अनुभाग की भी है। सत्ता में जो, यानी नया बंधने वाला, सत्ता का तो हमने देखा, अनुभाग कांड घात हुआ था, जो नया बंध होता है अप्रशस्तों का द्विस्थानीय और प्रशस्त का चतुस्थानीय। इस तरह से हमने बंध की बात की। उदय की बात भी हमने कल देखी थी विस्तार से, कितने प्रकृतियों का उदय होता है, ज्ञानावरण का है, दर्शनावरण चार है, अंतराय पांच है, मुनि के दस नौ या आठ है, साताया साता वेदनी है, उच्च निज गोत्र है, आयु अपनी भुज्यमान आयु का उदय है, और नाम कर्म में भी हमने देखा नरक गति की होगी तो 29 का है, देवगति में भी 29 का उदय, मनुष्य तीर्यंच में सामान्य से 30 का है और वो उद्योत वाला होगा तो 31 का है। इसलिए उदय रूप भी हमने प्रकृतियों की बात देखी थी, यानी ये प्रकृति उदय हुआ। स्थिति उदय में हमने देखा वर्तमान एक जो सत्ता का निषेक है उसका उदय, एक स्थिति का एक निषेक का उदय होता है। प्रदेश उदय में भी हमने अजगन्य अनुत्कृष्ट देखा था। अनुभाग उदय में अप्रशस्त कर्मों का दो स्थान वाला और प्रशस्त का चार स्थान वाला लिया। ये उदय की बात, जिसकी उदय जिसका उदय उसी की उदीर्णा भी होगी। उसके बाद सत्व की बात अभी अभी हम देख चुके हैं, किसकी सत्ता नहीं होगी तो तीर्थंकर के आरक चतुष्क की नहीं होगी, तीन आयु की नहीं होगी या दो आयु की नहीं होगी, और सम्यक सम्यक मिथ्यात्व तो उसकी भी सत्ता नहीं भी होगी या एक की होगी एक की नहीं होगी दोनों की नहीं होगी। इस तरह से हमने चारों में ये बातें देखी। अब आगे बढ़ेंगे 33 नंबर को पढ़ेंगे यहाँ पर, यानी यहाँ तक की ये बातें तो अभव्य में भी होती है। यहाँ तक तत्तो अभवजोगम परिणामं बोलिऊण भो कर्णं करेदि कमसो अधापवत्तम अणुमणि अट्टिम ततः भव्ययोग्यं परिणामं मुक्त्वा भव्यो हि कर्णं करोति क्रमशः अधप्रवृत्तम अपूर्वमनिवृत्तिम। अभी उसके पश्चात क्या होता है, अभव्य योग्य परिणाम छोड़कर, यानी अभव्य के तो यहाँ तक ही होते हैं, भव्य जीवों के परिणाम इससे भी विशुद्ध होकर आत्मसन्मुख जो हम कहेंगे उसकी विशुद्धि और भी बढ़ेगी, और वो भव्य ही जीव करण करते हैं यानी करण लब्धि में प्रवेश करते। तो करण लब्धि में क्रमशः कौन कौन से करण होते हैं, तो अधप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये उसके तीन नाम है करण के, उसकी चर्चा आएगी अभी। करण यानी यहाँ परिणाम को करण का, करण शब्द के और कौन से अर्थ मालूम है आपको अश्विन भाई? करण यानी साधन, करण यानी इंद्रिय, गणित के सूत्रों को फॉर्मूलोज को भी हम करण सूत्र कहते हैं, करण परिणाम को भी कहते हैं। तो ये अब आगे बढ़ेंगे, देखो टीका पढ़ेंगे। उसके पश्चात यानी अभी हमने ये जो बातें देखी प्रायोगिक लब्धि में, उसके पश्चात अभव्य के भी योग्य ऐसे चार लब्धि रूप परिणाम को समाप्त कर, यानी अभी ये पांचवी लब्धि में प्रवेश करने वाला जीव लिया है, भव्य जीव ही लगाया हो और सभी भव्य उसमें प्रवेश करेगी ऐसा भी नहीं है। भव्य जीव भी अगर उसकी वो तो तत्व विचार में नहीं, वो तो छुड़ गया कुछ अन्य कार्य में लग गया, तो उसके भी वो तो इतना होकर फिर पहले जैसा हो जाता है। भव्य जीव ही अधप्रवृत्त अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण को करता है। इन तीन करणों का गोमठ सार में जीव कांड के गुणस्थान अधिकार में और कर्म कांड के त्रिकरण चुल्लिका अधिकार में विशेष व्याख्यान है, वहां से जानना। यहां भी सामान्य सा गाथाओं का अर्थ कहते हैं, क्योंकि गाथा यहां पर भी है उसका भी अर्थ यहां बताएंगे, वहां तो विस्तार से हमने देख ही लिया है, अभी फिर यहां पर भी देख लेंगे। ये पंचलब्धि पुस्तक में तो इसको बहुत ही विस्तार से लिया है, इन्हीं ग्रंथों के आधार से ही लिया है सब। अभी हम 34 नंबर की गाथा पढ़ेंगे, 56 पृष्ठ पर आ गए। अन्तो मुहूर्त काला तिन्नि विकरणा हवन्ति पत्तेयम् उवरीदो गुणीयकमा कमेण संखेज्य रूपेण। अन्तर्मुहूर्त कालानि त्रिण्यपि करणानि भवन्ति प्रत्येकम् उपरितः गुणित क्रमाणि क्रमेण संख्यात रूपेण। देखो क्या कहा, अंतर्मुहूर्त कालानि त्रीणि अपि करणानि, यानी तीनों ही करण अंतर्मुहूर्त काल वाले हैं, हर एक का अपना अपना अंतर्मुहूर्त काल है प्रत्येक का। उपरी तह ऊपर से अगर कहेंगे तो ऊपर से ने अनिवृत्ति करण का काल अंतर्मुहूर्त है, परंतु वो छोटा अंतर्मुहूर्त, उससे संख्यात गुणा, नीचे नीचे संख्यात गुणा, अपूर्व करण का काल अंतर्मुहूर्त है और उससे संख्यात गुणा अध प्रवृत्त करण का काल अंतर्मुहूर्त। तो ऊपर से बताते समय हमने संख्यात गुणा था, नीचे से बताएंगे तो अपूर्वकरण का जो है उससे संख्यात वे भाग प्रमाण, अपूर्वकरण का अध प्रवृत्त का जितना है उससे संख्यात वे भाग प्रमाण अपूर्वकरण का, और उससे संख्यात वा भाग अनिवृत्तिकरण। देखो टीका, तीनों ही करण प्रत्येक अंतर्मूर्त काल मात्र स्थिति युक्त है, तथापि ऊपर से संख्यात गुणा क्रम युक्त है, अनिवृत्तिकरण का काल अल्प है, उससे अपूर्वकरण का काल संख्यात गुणा है और उससे अधः प्रवृत्तकरण का काल संख्यात गुणा है। देखो ये करण के नाम ऐसे क्यों पड़े अटपटे, तो तीन काल के ने अनादि से अनंत काल तक के जो जो जीव प्रथम उपशम संयुक्त प्राप्त करेंगे, जब वो करण लब्धि के परिणाम में आएंगे, तो स्टार्टिंग में जो हमने अध प्रवृत्तकरण कहा उस अंतर्मूर्त काल तक क्या होता है, जीवों के परिणामों के आपस में तुलना करेंगे। क्या कह रहे, समान है देखो अध प्रवृत्तकरण का पहले अर्थ देखो, अध यानी नीचे के, यानी कोई जीव पहले समय में है, कोई ऊपर चौथे समय में है, कोई पांचवे समय में है, तो उनके परिणाम समान हो सकते हैं विशुद्ध, और वो करने वाले वो जीवों का ग्रुप बनाए हमने तो उनकी संख्या भी समान हो सकती है। तो नीचे और ऊपर जो समय है उनमें जो समानता पाई जाती है, परिणाम उनकी समानता पाई जाती है, तो उसको कहेंगे अध प्रवृत्तकरण। देखो आपकी क्रिकेट मैच चलती है ना, तो जो कमेंटेटर होते क्या कहते हैं, वो पहले की याद दिलाते, इतने साल में ये मैच हुई थी, अभी इसने तो पांचवे, हाँ पूरा स्टैटिक्स उसके साथ कंपैरिजन में बता देते हैं कि इसने तो पांच ओवर में इतने रन बनाए, तो पहले कभी किसी ने कितने बनाए थे, ये जो कंपैरिजन होती है वो तो पहले के ही साथ कंपेयर करते। भगवान के ज्ञान में तो आगे आने वाले भी सब आए, तो अनंत जीवों की अपेक्षा अगर बात करेंगे तो परिणामों के वेरिएशन कितने हैं, तो यहाँ तो असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों के वेरिएशन, जीव कितने हैं अनंत, अभी वर्तमान में अनंत नहीं कर रहे, परंतु जो कर चुके हैं, जो अभी कर रहे हैं और वो भविष्य में करेंगे, उनके परिणाम अलग अलग वेरिएशन कितने हो गए, तो असंख्यात लोक प्रमाण वेरिएशन है, तो कितने ही जीवों को पहले समय में जितनी विशुद्धि है उतनी विशुद्धि किसी के चौथे समय में है, तो नीचे और ऊपर की जो समान हो सकते हैं उसको कहेंगे अध प्रवृत्तकरण। एक जीव की अपेक्षा बात नहीं, एक जीव की अगर बात करेंगे तो एक जीव का अपना परिणाम एक एक समय में अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना विशुद्ध होता है, अपने ही पूर्व परिणाम से अनंत गुना होता है, ये कंपेरिजन नाना जीवों की अपेक्षा चल रही है, और ये तीन नाम भी नाना गुणों की नाना जीवों की अपेक्षा पड़े कंपेरिजन करेंगे आपस में तब ये बातें होती है। इतने अलग अलग परिणाम वाले जीव भी ये उपशम समय को प्राप्त करते हैं, तो ये करण लब्धि में प्रवेश किया है। फिर उसके बाद अंतर्मूर्त में वहां नाम है अपूर्व करण। अभी ये जो जीवों की इतने हमने परिणामों के वेरिएशंस देखे थे, अभी एक समय की रेंज अलग होगी, पहले हमने क्या क्या कहा था, पहले समय वाला चौथे पांचवे भी समय से समानता हो सकती, अब किसी भी एक समय का परिणाम दूसरे तीसरे आदि किसी परिणाम के साथ कंपेयर नहीं हो सकता, वो अपूर्व अपूर्व ही होगी, परंतु एक समय में वैरायटी होगी, समानता भी होगी असमानता भी होगी, किसी के अविशुद्धि कम है किसी के अधिक है, परंतु उसकी जो अपनी रेंज है उस रेंज में हीनाधिक हो सकता है अलग अलग जीवों के। एक जीव का तो अपना जो कोई एक परिणाम है वही एक समय के लिए तो एक ही परिणाम होगा, एक समय में तो कोई दो चार परिणाम नहीं होने वाले। तो अलग अलग जीवों की कंपेयर करेंगे हम, तो यानी उसका पहला समय लेना, वर्तमान में जो कर रहे हैं उसकी तो बात ही नहीं है, पहले भी जो कर चुके हैं उनके पहले समय में परिणाम कैसे थे, भविष्य में जो कोई करेंगे उनके पहले समय में परिणाम कैसे रहेंगे, इसकी कंपैरिजन। तो पहले समय की अपनी रेंज, दूसरे समय की अपनी रेंज, यानी पहले समय का जो कोई सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि वाला परिणाम है उससे दूसरे समय वाला जघन्य परिणाम भी अनंत गुणा विशुद्ध वाला होगा। इसके लिए इसका नाम है अपूर्व कर्म, परिणाम अपूर्व अपूर्व होते हैं नाना जीवों की अपेक्षा। तीसरा कौन सा है, अनिवृत्तिकरण, निवृत्ति ने भेद, अनिवृत्ति ने भेद नहीं है। तो नवे अनिवृत्तिकरण जो है उसके जितने समय है उस एक एक समय का बस एक एक फिक्स परिणाम सभी अनंत जीवों का, जो जो दूसरे समय में आए सबका परिणाम से, तीसरे समय में आए सबका परिणाम से, पहले समय से दूसरे समय वाला अनंत गुणा उससे तीसरे समय और अनंत गुणा, परंतु अभी यहाँ तो सभी की समानता होगी, इसमें कोई विशुद्धि में कोई अंतर नहीं। अब यहाँ पढ़ेंगे अभी हम, यानी इतना बेसिक हमने देख लिया, ये बात आएगी चर्चा में आगे। देखो 35 नंबर की बात हम गाथा पढ़ेंगे अभी। जम्मा हेठिम भावा कुवरिम भावे हि सरिसगा होंति तम्मा परमं करणं अधापवोत्ति निदिट्ठम यस्माददस्तन भावा उपरितन भावैः सदृशा भवन्ति तस्मात् प्रथमं करणं अधप्रवृत्तम् इति निर्दिष्टम्। इति निर्दिष्टम् मैंने ऐसा बताया, किसने बताया, सर्वज्ञ ने, सर्वज्ञ भगवान, क्योंकि तीन काल की बातें जानते हैं, अनंत जीवों के परिणाम एक समय में युगपत जान रहे हैं, वही तो बता सकते हैं। तो कोई भी आचार्य ऐसा नहीं कहते कि मैं बता रहा, क्योंकि ये मूल मार्ग सर्वज्ञ से चला आया है वही यथार्थ मार्ग है। कोई अपने मन कल्पना से कोई नया उसमें नहीं, नहीं हमने चालू किया ये इसका पंथ है अगर कहेंगे और वो सर्वज्ञ के साथ उसका कनेक्शन नहीं होगा तो उसको हम सत्य नहीं कहेंगे। किसी कांजी स्वामी का पंथ नहीं है, किसी श्रीमत का पंथ नहीं है, वो मूल बात अगर चली आई है उसको स्वीकार कर उसको बताने वाले अन्य अन्य जो ज्ञानी हो जाते उनके निमित्त से जिनको मार्ग मिला उनको उनकी महिमा आती है, परंतु वो महावीर भगवान की वाणी है, वो किसी अन्य की वाणी नहीं है। उसके अनुसार उन्होंने स्वयं अपनाया, स्वयं उसका मार्ग पाया और अन्य को बता दिया। इसलिए निर्दिष्टम का नहीं, भगवान ने बताया है और आचार्य उसको प्रस्तुत कर, यह तो नेमिचंद आचार्य ने लिखा, तो उन्होंने भी मन से तो नहीं लिखा है, जयधवला के आधार से लिखा, जयधवलाकार ने कहां से लिखा, वीर स्वयं स्वामी ने, हाँ वो तो षटखंडागम जो लिखा था उसके आधार से उन्होंने बनाया, और वो कहां से ले, तो मूल जो परंपरा भगवान की चली आई उसके आधार से हुआ। देखो यहाँ क्या लिखा है, यस्मात अधस्तन भावा, अधस्तन है नीचे के, नीचे के ने पहले दूसरे समय के, और उपरीतन भावे ने बाद में पश्चात वाले समय में, सदृशा भवंती समान हो सकते हैं, तस्मात यानी इसलिए, प्रथमम करण, ये करण के तीन करण बताए ना, वो उसमें से पहला करण अधप्रवृत्तम इति निर्दिष्ट, उसका नाम अधप्रवृत्त बताया। टीका, चूंकि यहाँ नीचे के समयवर्ती किसी जीव के परिणाम ऊपर के समयवर्ती किसी जीव के परिणामों के सदृश होते हैं, इसलिए इसका नाम अध प्रवृत्त करण है। भावार्थ, करणों के नाम नाना जीवों की अपेक्षा है, नाना ने अनेक, अधकरण मानकर, मानकरण शुरू करके किसी जीव के थोड़ा काल हुआ तो किसी जीव के बहुत काल हुआ, ये थोड़ा और बहुत वो अंतर्मुख की बात चल रही है, अभी कुछ समय हुए, किसी को अधिक समय हुए, उनके परिणाम इस करण में, यानी जो अध प्रवृत्तकरण का जो अंतर्मुहूर्त है उसमें संख्या और विशुद्धता से समान भी हो सकते हैं, ऐसा जाना। ये संख्या और विशुद्धता की जो बात है तो उसकी हमने बहुत विस्तार से चर्चा पहले भी की थी, गुणस्थान अधिकार में भी देखा था, पंचलब्धि में भी देखा था। तो ये उसके ग्रुप्स हम बनाते हैं जो हमने अभी यहाँ शायद आएगी बात, तो उसको उसके आधार से देखेंगे आप कि संख्या और परिणामों की बात तो हमने अभी देखी, किसी के परिणामों में ने विशुद्धि लेना और संख्या ने वो एक नंबर का परिणाम, दो नंबर का, तीन नंबर का, चार नंबर का, ऐसे अगर हम ग्रुप करेंगे तो वो ग्रुप्स भी नीचे और ऊपर समान हो सकते, इतनी बात लेने से। अब 36 नंबर, पहले तो तीनों की परिभाषाएं बताते हैं, पूर्वकरण क्या है, अनिवृत्तिकरण क्या है। समय समय भिन्ना भावात्मा अपूर्वकरणो हो अनियट्ठीवित हम विय परिसमयम् एक परिणामो। समय समय भिन्ना भावात्मद पूर्वकरणो हि अनिवृत्तिरपि तथैव च प्रतिसमयम् एक परिणाम। देखो गाथाएं भी कितनी आसान है, समय समय भिन्ना भावा, प्रति समय भिन्न भिन्न भाव है, यानी कोई नीचे के समय का ऊपर के समय के सदृश वो भाव है ही नहीं है। इसलिए क्या है, तस्मात, यानी इसलिए अपूर्वकरण, अपूर्व पहले नहीं था ऐसा, नया नया परिणाम, नए परिणाम सब जीवों के अपने अपने। अनिवृत्ति रपि तथैव च, और अनिवृत्ति में क्या होता है, प्रति समय में एक परिणाम, अनंत जीवों का एक पहले समय में परिणाम सेम, दूसरे समय में सेम। टीका पढ़ेंगे, प्रति समय जीवों के भाव भिन्न ही होते हैं, वह अपूर्वकरण है, यानी अपूर्वकरण के अंतर्मुर्त की बात है। पहले समय में उसकी अपनी रेंज अलग, दूसरे समय में उससे अनंत गुणी अलग सी रेंज है, तीसरे समय में उसकी रेंज अलग, तो उसको कहेंगे अपूर्वकरण भाव। किसी जीव को अपूर्वकरण मानकर अल्प काल हुआ, किसी को बहुत काल हुआ, यानी किसी के थोड़े समय हुए, किसी अधिक समय हुए, वहां उनके परिणाम सर्वथा सदृश नहीं होते, यानी सदृश होते ही नहीं। नीचे के समय वालों के परिणाम से ऊपर के समय वालों के परिणाम अधिक संख्या और अधिक विशुद्धता युक्त होते हैं, यानी उसकी संख्या भी बढ़ती है, अलग अलग वेरिएशंस उसके बढ़ते हैं और विशुद्धि भी बढ़ती है। तथा यहां जिनके करण मानकर समान काल हुआ है उनके परिणाम परस्पर सदृश भी होते हैं अथवा असदृश भी होते हैं, ऐसा जानना। यानी पहले समय में किसी के अधिक विशुद्धि है, किसी के कम है, परंतु वो दूसरे के समान तो है ही नहीं। पहला जो समय है वो अनंत जीवों के लिए, उसमें समानता हो सकती है, दो चार पांच दस पंद्रह असंख्या जीवों का सेम परिणाम हो सकता है, वैसा का वैसा, और विसदृश भी हो सकता है। और जहां प्रति समय एक ही परिणाम होता है वह अनिवृत्तिकरण है, उसमें परिणामों में कोई भेद नहीं। भावार्थ, जिनको अनिवृत्तिकरण मानकर समान काल हुआ उनके परिणाम समान ही होते हैं, परंतु नीचे के समयवर्तियों से ऊपर के समयवर्तियों के अधिक होते हैं, ऐसा जानना। यानी समान परिणाम, यानी उसकी विशुद्धि बढ़ती चली जाती, ऊपर ऊपर बढ़ती चली जाती। नीचे के यानी पहला दूसरा तीसरा समय, ऊपर के समयवर्ती यानी अभी वो अंतर्मुर्त होकर आगे हम मान लेते 15वां 16वां समय चल रहा है, तो उसके परिणाम अधिक विशुद्ध होते हैं। संख्या तो सबकी एक ही है, उसमें तो बढ़ने की कोई सवाल नहीं है। विशुद्ध होते, अधिक विशुद्ध होते। क्योंकि एक ही परिणाम है ना, तो परिणाम एक से तो ज्यादा नहीं होगे, परंतु विशुद्धि बढ़ेगी। तो अधिक विशुद्ध होते आप लिख लो अपने समझने के लिए। अब उन्होंने पहले तीन करणों के नाम बताए। हर एक करण का एक एक अंतर्मुहूर्त है। अध: प्रवृत्त करण काल का अंतर्मुहूर्त बड़ा है, उससे अपूर्व करण का संख्यातवे भाग प्रमाण है, और उससे अनिवृत्ति करण का उससे भी संख्यातवे भाग प्रमाण है। और ये एक के बाद एक होते हैं, बीच में कोई अंतर वगैरह नहीं है। अध: प्रवृत्त करण हुआ, इमीडिएट अपूर्व करण होता है, उसके इमीडिएट अनिवृत्ति करण होता है, और उसके पश्चात इमीडिएट प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पढ़ेंगे आगे 37 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। गुणसेढ़ी गुण संकम हृदि रस खंडम चणत्ति पड़मम्मी परिसमय मणंत गुणम विसोहि वड्डी वड्डदिहु गुणश्रेणी गुण संक्रमम स्थिति रस खंडम च नास्ति प्रथमे प्रतिसमय मनंत गुणम विशुद्धि वृद्धि वर्धते ही। देखो क्या कहते हैं, यहाँ क्या नहीं होता है वो बताए, क्योंकि ये बातें अपूर्व करण से होने वाली है, परंतु अधकरण में नहीं होती है। अधकरण में क्या होता है, बस प्रति समय विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ती चली जाती है। एक जीव ने जो पहले समय में विशुद्धि थी, उससे दूसरे समय में अनंत गुणा, तीसरे समय में उससे भी अनंत गुणा, चौथे समय में उससे भी अनंत गुणा, ऐसे अंतर्मूर्त के जितने असंख्यात समय है, अनंत गुणा अनंत गुणा अनंत गुणा प्रति समय बढ़ती चली जाती है। एक जीव की अपेक्षा बात चल रही है, नाना जीवन की अपेक्षा क्या होता है, तो आपस में कंपैरिजन करके बता दिया। परंतु हर एक जीव की अपनी अपनी विशुद्धि बढ़ती है, परंतु ये आगे चलकर जो गुण श्रेणी गुण संक्रमण स्थिति कांडघात अनुभाव कांडघात होते हैं, वो यहाँ पर नहीं हो गए, ये बात बता रहे। वो कहाँ होते वो आगे चलकर बताएंगे कहाँ हो गए। टीका, पहले अधकरण में, यानी पहला करण है ना, इसलिए पहले लिखा गुण श्रेणी। अब इसका अर्थ भी समझेंगे जब वो होती है, जब कहेंगे तब उसका अर्थ समझेंगे। गुण संक्रमण स्थिति कांडक घात, इसकी तो हमने भूमिका में देखी थी बात थोड़ी, गुण श्रेणी की भी और गुण इसकी भी देखी थी। अनुभाव कांडक घात नहीं होते, परंतु तो क्या होता है, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता बढ़ती है। विशुद्धि जितनी एक समय में है, दूसरे समय उससे अनंत गुणा, तीसरे समय में उससे अनंत गुणा, प्रति समय अनंत गुणा बढ़ती चली जाती। तो उस कारण यहाँ क्या होता है, ये गुणश्रेणी आदि नहीं होती, यहाँ होता क्या है, अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ने से यहाँ कार्य क्या होगा, कर्मों में कुछ विशेषता बनेगी कि नहीं बनेगी। जीव की अपेक्षा तो बता दिया विशुद्धि इतनी बढ़ती है, अब यहाँ देखेंगे क्या होता है उसको देखेंगे। 38 नंबर की गाथा, सत्थानम असत्थानम चौविठानम रसम च बंधदिहु परिसमय मणंतेनय गुणभजियकमं तुरस बंदे शस्तानाम अशस्तानाम चतुर्द्विस्थानम रसम च बध्नातिहि प्रतिसमय मनंतेन च गुणभजित क्रमं तुरस बंदे। देखो क्या कहते हैं, शस्त और अशस्त, यानी प्रशस्त और अप्रशस्त, ये जिसको हम कहते हैं शुभ प्रकृति और अशुभ प्रकृति, पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति। देखो नीचे देखो, शस्तानाम अशस्तानाम चतुर्द्वि, यानी प्रशस्त के लिए चतुस्थान वाला और अप्रशस्त के लिए द्विस्थान वाला। रसम च बधनाती, अनुभाग बंद होता है, और प्रति समयम अनंतेन च गुण भजित क्रमम तो रस बंदे, अनुभाग जो बंद होता है ये प्रशस्त कर्मों में, प्रति समय अनंत गुणा बढ़ता चला जाता है। देखो अभी टीका पढ़ेंगे, और सातादि प्रशस्त प्रकृतियों का
सातादि
प्रशस्त और अशस्त, सात आदि में प्रशस्त तत्व क्या है? गाथा में नहीं है क्योंकि ये टीका है, तो गाथा का अर्थ यहाँ खोलकर बताया है, वहां तो केवल प्रशस्त प्रकृतियां बताई गई। तो प्रशस्त प्रकृतियां घाती कर्मों में कितनी है?
सभी
अप्रशस्त। तो अघाती में है, तो अघाती में है तो बोलो कौन कौन सी है। तो वेदनीय में सात आवेदनीय है, आयु में तीन आयु है। अभी यहाँ आयु का बंध नहीं होता, उसकी बात नहीं, हम तो प्रशस्त प्रकृतियां देख रहे हैं। तो नाम कर्म में जो शुभ नाम कर्म है और उच्च गोत्र, ये क्या है? प्रशस्त है। उसको बताने के लिए सातादि में सब गर्भित हो गए, ख्याल में ही बात। तो सातादि प्रशस्त प्रकृतियों का प्रति समय अनंत गुणा चतुस्थान रूप अनुभाग बांधता है। ऊपर तो दोनों को एक साथ लेकर चतुर्द्विस्थान ऐसा लिख दिया, तो उसमें से ये टीकाकार का कार्य ये ही होता है। क्या उनका है प्रयोजन क्या है, तो उसको अर्थ खोलकर बतावे। तो सातादि प्रशस्त प्रकृतियों का एक होता है गाथा का अन्वयार्थ, गाथार्थ डायरेक्ट, गाथा का डायरेक्ट शब्द से शब्द को मिलाकर अर्थ बताना, और एक होती है टीका या भावार्थ होता है, तो उसको खोल कर बताया जाता है। तो सातादि प्रशस्त प्रकृतियों का प्रति समय अनंत गुणा चतुस्थान रूप अनुभाग बांधता है, यानी अनंत गुणा बढ़ता हुआ बांधता है। तथा असात आदि अप्रशस्त प्रकृतियों का प्रति समय अनंत वे भाग मात्र। आप कहेंगे ऊपर केवल अनंत गुणा ही लिखा है, एक तो अनंत गुणा बढ़ता हुआ और एक अनंत गुणा हीन होता हुआ, यानी अनंत वे भाग प्रमाण। द्विस्थान रूप अनुभाग बांधता है। अब 58 पृष्ठ पर आते हैं, ये बात ख्याल में आई? अभी तो वैसे तो कुछ बातें है नहीं बहुत डिफिकल्ट। 39 पृष्ठ पर आते हैं। पल्लस्य शङ्खभागम् मुहूर्तान्तेन ओसरदि वन्दे शङ्खेभ्य सहस्राणि अधापवत्तम् योऽसरणा। पल्लस्य शङ्खभागम् मुहूर्तान्तरेण अपसरति वन्दे शङ्खेय सहस्राणि च अधप्रवृत्ते अपसरणानि। क्या कहते हैं? ये तो हमने प्रायिक उपलब्धि में भी स्थिति बंधापसरण देखा था। अब यहाँ कहते हैं यहाँ पर भी ये जो बंध है उसका अपसरण होता है एक एक अंतर्मुहूर्त में, मुहूर्त अंतेन या मुहूर्तांतरेन, एक एक अंतर्मुहूर्त में ये जो बंध है स्थिति का वो घटता है, अपसरत या नहीं घटता है। कितना घटता है एट ए टाइम? पल्ल का संख्या तो अभाग, पल्ल से संख्या भागव, यानी पल्ल के संख्यात्वे भाग प्रमाण हर अंतर्मुहूर्त में अपसरण होता है, इतना घटकर स्थिति बंध होता है नया नया। और ऐसे अपसरण कितने होते हैं अधप्रवृत्तकरण के काल में? तो कहते हैं संख्येय सहस्राणि, संख्यात सहस्र। अभी हमने तो पहले भी कितने कोड़ा कोड़ी देखे थे, ये सब संख्या सहस्र कहने से वो सब आ गए। नहीं समझता, इसकी चर्चा हमने प्राग लब्धि में की थी, क्योंकि एट अ टाइम पल्ल का संख्यात भाग घटा, तो पल्ल प्रमाण घटने के लिए संख्यात बार करने पड़ेंगे, चौथा भाग होगा तो चार भाग करने पड़ेंगे। तो एक सागर सिद्धि घटने के लिए कितना करना पड़ेगा, हमने देखा था उस दिन। हाँ, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ल का तो एक सागर होगा, और पल्ले का संख्या तो भाग चौथा भाग भी लेते हैं, तो 40 कोड़ा कोड़ी बार करना पड़ेगा तब जाके एक सागर घटेगा। यहाँ तो कितना घटता है? तो अधः प्रवृत्तकरण के शुरू में जितना होता था उसके संख्यात वे भाग प्रमाण जाके अंत में होता है, उसके संख्यात वे भाग हुआ तो कितने ही सागर घटे, क्योंकि अंत कोड़ा कोड़ी का संख्यात भाग अंत कोड़ा कोड़ी ही है, तो उतने तो घटेंगे। तो इतने सागर घटने के लिए कितनी बार होगा, वो तो कोड़ा कोड़ियों में चले जाएगा प्रकरण, फिर भी उसको नाम क्या दिया, संख्या था क्या, संख्या सहस्र लिखा ना यहाँ पर।
हाँ,
अनेक कोड़ा कोड़ी अंदर मूड़ तो उसके अंदर कर दी थे। और ये भी यहाँ तो अदब प्रवृत्ति का बड़ा काल है, अपूर्वकरण का और छोटा होगा, अनिवृत्तिकरण का और छोटा होगा, वो गुणस्थान में ऊपर देखते हो। यहाँ तो हम प्रथम अक्षर की बात कर रहे हैं। यानी यहाँ क्या होता है, विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ रही है, उससे जो प्रशस्त कर्मों में अनुभाव चतुस्थानीय और हर समय अनंत गुणा बढ़ता हुआ बंद हो रहा है। देखो यहाँ पर भी बंद हो रहे हो, अप्रशस्त कर्मों में अनुभाग घटता चला जाता है, स्थिति तो दोनों में ही घटती चली जाती है। यानी वो तो स्थिति बंद जो घटना, एक एक अंतर मूल में पल्ले का संख्यात्व भाग इतना घटकर स्थिति बंदेगी नहीं, तो उसके कारण कितना टोटल स्थिति बंद घटेगा वो बात अभी बताएंगे 40 नंबर की गाथा। आदिम करण धाये पड़मठ दिबंध दो दुचारी मम्मी संखे जगुण विहीनो दिबंधो हो नियमेन। आदिम करणाध्यायाम प्रथम स्थिति बंध तस्तु चरमे संख्यात गुण विहीन स्थिति बंधो भवति नियमेन। आदिम करण अध्याय आदि में ओहो अच्छा सॉरी मुझे लगा आप गाथा पढ़ी मैंने। अब ऊपर की हम 39 की टीका पढ़ेंगे, क्योंकि हमने तो डायरेक्ट गाथा से अर्थ देखा था, अब टीका में से पढ़कर अर्थ देखेंगे, फिर दोबारा 40 नंबर पर आएंगे। ये 39 की टीका पढ़ रही हूँ मैं। अधः प्रवृत्ति के प्रथम समय से लेकर अंतर्मूर्त तक, क्योंकि इसका अंतर्मूर्त काल है, पूर्व स्थिति बंध से, ये अंतर्मूर्त का है, जो स्थिति बंधने का अंतर्मूर्त है उसकी बात है। एक अंतर्मूर्त तक उतना का उतना स्थिति बंध होगा, बाद में जाकर उसका अपसरण होगा, घटना होगा। तो प्रथम समय से लेकर अंतर्मूर्त तक पूर्व स्थिति बंध से, पूर्व ने प्रायोगिक लब्धि के अंत में जितना स्थिति बंध था उससे पल्य का संख्यात्वा भाग मात्र हीन स्थिति बंध होता है, यानी घटकर होता है। उसके पश्चात अंतर्मूर्त तक उससे भी पल्य के संख्यात्व भाग मात्र घटता स्थिति बंध है, यानी हर अंतर्मूर्त में उतना उतना घटेगा। इस तरह एक अंतर्मूर्त द्वारा पल्य के संख्यात्व भाग मात्र घटता स्थिति बंधापसरण होता है। अधः प्रवृत्त में ऐसे संख्यात हजार अपसरण होते हैं, ये स्थिति बंधापसरण की बात है। हर अंतर्मूर्त में इतना इतना स्थिति बंध घटता चला जाता है, और अधः प्रवृत्त का काल भी अंतर्मूर्त है और ये भी छोटे छोटे अंतर्मूर्त है। अभी हमने हिसाब लगाया था ना, अनेक कौड़ा कौड़ी ऐसे स्थिति बंधापसरण होगी। क्या है अंतर्मूर्त कहने से हम सबके लिए वो 48 मिनट वाला एक समय कम उतना बड़ा अंतर्मूर्त लगाते, ये बात ठीक नहीं है। अब 40 नंबर की गाथा अभी हमने देखी थी, पढ़ी थी, देखो उसका अर्थ देखते डायरेक्ट श्लोक में से। आदिमोकरण, आदिमोकरण कौन सा है लक्ष्मी? हाँ, आदि ने पहला कर, कौन सी बात चल रही है? अध प्रवृत्त, और उसका अध्याय ने काल, यानी आदिम यानी प्रथम करण के काल में आदिम करणाध्यायाम, पहले अध प्रवृत्त करण के काल में क्या होता है? प्रथम स्थिति बंधतः, अध प्रवृत्त करण पहला है, अभी हम उसी की बात चल रही, तीन में से लास्ट वाला है अनिवृत्तिकरण। अध प्रवृत्ति ने नीचे ऊपर के परिणाम सदृश होना, उसको अध प्रवृत्त करण के, पहले जो हमने देखा था संख्यात गुणा वाला लिखा था वो ऊपर से नीचे आए थे बताने के लिए। देखो आपको जो डाउट है ना, एक काल है ना, हमने उल्टे क्रम से देखे थे, ऊपर इतना लिखा था ना, ऊपर से शब्द आया था, ऊपर से नीचे, और उसका अर्थ खोलकर भी बताया था कि अगर नीचे से ऊपर देखेंगे तो संख्यात्वे भाग कहेंगे हम उसको। ऐसे कोई डाउट है तो पूछना कभी। हाँ, यह क्या कहते हैं, आदिम करणाद यानी प्रथम करण के जो उसका काल है उसमें प्रथम स्थिति बंधतः, प्रथम जो स्थिति बंध हुआ उसमें आने पर यानी अध प्रवृत्त काल में एंटर हुआ तो पहले में पहले जितना स्थिति बंध किया उससे स्थिति बंधतः यानी उससे चरम यानी अंतिम कैसा है, संख्यात गुण विहीन, संख्यात गुणाहीन है यानी संख्यात विभाग करना है। पहला भी कितना था अंत कोड़ापुर और ये भी अंत कोड़ापुर, तो हम कहेंगे ना पहला 200 करोड़ होगा तो भी उसको कोड़ापुरी कहेंगे, अंत कोड़ापुरी, और 200 से 100 हो जाएगा, 50 होगा तो भी उसको कहेंगे, तो उसको भी अंत कोड़ापुरी ही कहेंगे, परंतु वो संख्यात गुणाहीन यानी संख्यात वे भाग प्रमाण हुआ है। अध प्रवृत्त करण में एंटर हुआ तब जो पहला स्थिति बंध किया उससे अध प्रवृत्त का अंत में जो स्थिति बंध करेगा वो संख्यात गुणाहीन करेगा। दोनों का नाम क्या, अंत कोड़ा कोड़ी सागर। और ये क्यों हुआ इतना ही, तो स्थिति बंधापसरण होते गए, हर बार पल्ले का संख्यात्वाभाग 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 ऐसे हजारों यानी करोड़ों कोड़ा कोड़ी बार ऐसे बंधापसरण हुए तब जाके संख्यात्वे भाग प्रमाण यहाँ अंत में स्थिति बंध बाकी रहा। यहाँ टीका पढ़ेंगे, ऐसे होते हुए यानी ऐसे संख्यात हजार अपसरण होते हुए प्रथम करण के काल में यानी अध प्रवृत्त करण के काल में प्रथम समय संबंधी अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थितिबंध से उसके अंत समय में यानी अध प्रवृत्त के ही अंतिम समय में संख्यात गुणाहीन होता है यानी स्थितिबंध होता है। ये वाक्य पूरा करने के लिए ब्रैकेट में लिख दिया है। हाँ, यानी प्रथम स्थितिबंध से अंतिम स्थितिबंध संख्यात गुणाहीन होता है। अब 41 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। तच्चरी मेठी दिबंधो आदिम सम्मेण देश सयलजमं परिवच्यमाण गस्सवि संकेज गुणेन हीनकम। तच्चरमे स्थितिबंध आदिम सम्मेण देश सकलयमं प्रतिपद्यमानस्यापि संख्येय गुणेन हीन क्रमः। क्या कहते हैं, तच्चरमे स्थितिबंधा, वो अंतिम जो स्थितिबंध है वो कहते हैं आदिम सम्मेण देश सकलयमं प्रतिपादमानस्य। यानी देखो अभी जो प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त कर रहा है जीव, कौन से गुणस्थान में अभी वो, अरे पहले में है। अभी उसको चौथे में मत भेजो, अभी वो पहले में है। तो कोई जीव यहाँ से चौथे में जाएगा, कोई जीव डायरेक्ट छठे में, कोई नहीं जाता, कोई जीव डायरेक्ट पांचवे में जाएगा पहले से, और कोई जीव डायरेक्ट सातवें में जाएगा। ये बात है ना, यहाँ क्या कहते हैं, तो जो चौथे में जाएगा, जो पांचवे में जाएगा और जो संयत यानी सातवें में जाएगा, सकल यमम कहा, उसके संख्येय गुणेन हीन क्रम। देखो ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहाँ की बात है, अध प्रवृत्त करण के अंत की। तो अध प्रवृत्त करण वाले भी करने वाले, कोई चौथे में जाने वाले, कोई पांचवे में जाने वाले और कोई सातवें में जाने वाले, तो चौथे में जाने वाले का जितना स्थितिबंध है उससे पांचवे में जाने वाले का स्थितिबंध और संख्यात गुणाहीन है, और उससे सातवें में जाने वाले का स्थितिबंध उससे भी संख्यात गुणाहीन, यानी शुरू से ही उसके परिणाम अलग है, शुरू से ही विशुद्धि ज्यादा है, क्योंकि क्या है, कुछ लोग ऐसा समझते हैं जो सातवें में जाते हैं ना वो चौथे पांचवें को टच करते हुए ऊपर, ऐसा है नहीं। शुरू से ही उसके परिणाम अलग जाति के है, इतनी विशुद्धि यानी उसकी विशुद्धि कितनी अधिक बढ़ रही है कि उतने इतने जो स्थितिबंध अपसरण हुए है उसमें स्थितिबंध बहुत ज्यादा घटा है। अनिवृत्ति नहीं है अभी, हम अध प्रवृत्त में है। आप आगे के प्रश्न मत पूछना, लोगों के बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी क्योंकि वैसे विषय थोड़ा कठिन। अनिवृत्ति क्रम में आप याद रखिए प्रश्न पूछना। सुनो सुनो, हाँ ये सिद्ध नहीं होगा क्योंकि 28 मूल गुण पालन करने का भाव तो ये ऑर्डिनरी शुभ भाव है, वो तो मिथ्या दृष्टि के भी हो रहा है ऑर्डिनरी, यानी जो अभी लब्धि में नहीं आया उसके भी होता है, उसके कारण ये विशुद्धि नहीं। ये जो विशुद्धि यहाँ बढ़ रही है वो तो तत्व संबंधी निर्मलता है और उसके साथ वो तो जो कषायों की इतनी मंदता चल रही है, और ये कषायों की मंदता किसी व्रत पालने से नहीं आती, ये तत्व विचार से। हाँ उस शुभ यहाँ भी शुभ भाव होगी परंतु वो किस जाति के मंद परिणाम तो होगी यहाँ पर, परंतु वो कैसे मंद परिणाम है, अभी सम्यक तो प्राप्त करने जा रहा है तो उस संबंधी उसकी जो निर्मलता है, तत्व संबंधी निर्मलता उसकी मुख्यता है। हम तो शुभ भाव यानी जो शुभ भाव को भी नहीं लेते, शुभ आचरण को लेते कि वो व्रत पाल रहे हैं ना तो उसको सातवां गुणस्थान होगा ही, ऐसा नहीं। उसकी जितनी विशुद्धि होगी उसके वैसा गुणस्थान प्राप्त होगा। हमने अभी देखा था कि पहले समय में असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग विशुद्धि के परिणाम है, तो बाह्य में 28 मूल गुण पालन किए इसलिए उसके विशुद्धि बढ़ती, ऐसा है ही नहीं है। यह ज्ञान की बात चल रही है, उसके साथ साथ राग की भी बात चल रही है क्योंकि सब गुणों का अपना अपना परिणाम चल रहा है ना। ज्ञान में ये सारा निर्मलता हो रही है और उसके साथ साथ कषायों की मंदता भी ले। तो गिरेगा क्यों? नहीं, फिर गिरने का भी सवाल नहीं है ना, फिर चौथे में पांचवे में क्यों आएंगे, क्योंकि उसमें तो कुछ बाह्य में तो वो पालन चल ही रहा है, तो फिर सातवें में से छठे में और फिर उसके भी नीचे क्यों आते हैं जी? देखो सम्यक तो होता है तो वहां श्रद्धा गुण आ गया, सम्यक के साथ साथ ऊपर के गुणस्थान होता है तो ये चारित्र गुण में भी निर्मलता अधिक बढ़ रही है, इसकी विशुद्धि उसमें भी ले रहे, परंतु सम्यक तो होने में यहाँ ज्ञान गुण की निर्मलता, वो तत्व निर्णय की बात चल रही है, वो साथ साथ चल रही है। अनंतानुबंधी का अनुदय हो रहा है, अनंतानुबंधी का अनुदय हो रहा है कि प्रत्यक्षानादि का हो रहा है कि संजुलन का हो रहा है, उसमें उसकी बात आएगी चारित्र मुनि की। एट ए टाइम अनेक जीवों में अनेक गुणों में ये बात चलेगी। हाँ ऐसा ही है, नहीं ऐसा मानने वाले है ना, ये हमारी तो बहस इसी पॉइंट पर हुई थी। देखो अभी हम टीका से पढ़ेंगे इसको, हमने तो आपको डायरेक्ट गाथा से सुनाया, समय हो गया, ये चार लाइन पढ़ेंगे केवल। उस अंत समय में जो स्थितिबंध कहा, अभी हमने देखा अध प्रवृत्तकरण के अंत में जो स्थितिबंध होता है उससे, यानी चौथे में जाने वाले की बात, उससे देश संयम सहित प्रथम ऑप्शन संयुक्त को प्राप्त होने वाली चीज, प्रथम ऑप्शन संयुक्त ही हो रहा है परंतु उसमें वो डायरेक्ट पहले से पांचवे में जाने वाला है। संख्यात गुणाहीन स्थितिबंध होता है, यानी संख्यात्वे भाग प्रमाण होता है, उससे सकल संयम सहित प्रथमोपशम सम्यक्त को प्राप्त होने वाले के संख्यात गुणाहीन होता है। अभी अपना स्थिति बंध का प्रकरण चल रहा है ना, उसमें ये बात आई थी ना, विभंग यानी कि भी वो स्थिति बंध मिनिमम होता है, तो सम्यक संयम के सन्मुख वाले को लिया था। यही रुकेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सो